अभिनव इतना बोलते बोलते सीधे महल की गैलरी में पहुंचा। राजमहल की गैलरी में उसे काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नजर आईं, जो काफी ज्यादा महंगी थीं। वहीं जगह जगह पर नौकरों को देखकर वो बोला, अगर यहाँ पर ये लोग ना होते तो इनमें से कई सारी पेंटिंग्स को तो मैं यहाँ से उड़ा ले जाता और काफी महंगे दामों में इन्हें बेच देता। इतना बोलकर अभिनव आगे बढ़ा और उन पेंटिंग्स को छूकर देख रहा था कि तभी पीछे से एक राजमहल का नौकर आया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए क्या सर? जैसे ही अभिनव ने वो आवाज सुनी, वो घबरा गया और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया। उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इसे देख रहा था, काफी अच्छी है ये। वो नौकर अभिनव की बात सुनकर अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसे ऐसे जाते देखकर अभिनव बोला, ये लोग बात बात पर अपना सिर क्यों झुकाने लगते हैं? बहुत ही अजीब है ये सब, पता नहीं किसने बनाए होंगे ये ऐसे नियम। इतना बोलकर वो आगे बढ़ा, तभी वहां पर कियारा और अदिति, जो मासा के कमरे से बाहर निकल कर आ रही थीं, उन दोनों ने जैसे ही अभिनव को देखा, वो दोनों साइड से निकलकर जाने लगीं। लेकिन तभी अभिनव ने कहा, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? अभिनव के इस तरह से बोलने पर कियारा ने तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अदिति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास गई। बोली, क्या आप सच में हमारे बड़े भाई हो? अभिनव ने अदिति की बात सुनकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैं और तुम्हारा भाई? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं। जैसे ही उसने ये बात कही, कियारा की भौहें सिकुड़ गईं और वो उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी पीछे से नरेंद्र और पल्लवी आ गए। तभी नरेंद्र ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो अभिनव, ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं, ये मेरी बड़ी बेटी कियारा और ये मेरी छोटी बेटी अदिति है, और तुम दोनों क्या यहाँ पर खड़ी होकर अभिनव से क्या सवाल जवाब कर रही हो? कियारा ने अपनी माँ बाप की तरफ देखकर अपने मन में कहा, आखिर माँ और बाबा सा के दिमाग में क्या चल रहा है, और क्या सच में ये हमारे भाई हैं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, और इसकी बराबरी हम अभिमन्यु भाई साहब से तो कर ही नहीं सकते। कियारा ये सारी बातें सोचते हुए अभिनव को घूर रही थी। जैसे ही अभिनव की नज़र उस पर गई, वो धीमी आवाज में बोला, इसे हो क्या गया है, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? वहीं अदिति ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, हम कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, वो तो बस मैं ही भाई से पूछ रही थी कि ये सच में हमारे भाई हैं या फिर। इससे पहले कि अदिति अपनी बात पूरी कर पाती, पल्लवी ने उसे डांटते हुए कहा, ये सच और झूठ क्या होता है, वो है तुम्हारा भाई और इस बात में कोई दो राय नहीं है, समझी तुम? अब तुम लोग मेरे बेटे को परेशान मत करो, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ तुम लोग। इतना बोलकर अदिति और कियारा दोनों अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पल्लवी अभिनव के पास आई। उसने अभिनव के गाल को छूते हुए कहा, इतने दिनों बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है, आज मैं सच में पेट भरकर खाना खिलाऊंगी तुम्हें और सुकून की नींद सो पाऊंगी। नरेंद्र ने पल्लवी की बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी भाभी सा ने अभी जिस तरह बेहोश होकर पूरे राजमहल में नौटंकी फैलाई है, उसे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि अब राजमहल के बाकी लोग तो खाएंगे नहीं, और वैसे भी हमें और किसी की ज़रूरत भी नहीं है। पल्लवी, जाइए आप, हम तीनों का खाना लेकर कमरे में लगाइए, हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। अभिनव ने जैसे ही नरेंद्र की ये बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आप लोगों के साथ खाना क्यों खाऊंगा, मैं अकेले खा लूंगा, वैसे भी मुझे अकेले ही खाना खाने की आदत है। पल्लवी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने उसकी ठुड्डी पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम नहीं जानती तुम्हारी मासा कितने दिनों तक तुमसे दूर थी, और आज जब तुम हमें मिले हो तो हम ऐसे कैसे तुम्हें अकेले खाना खाने दे, और वैसे भी तुम अकेले खाना इसीलिए खाते थे क्योंकि हम तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन अब तो हम साथ हैं ना। अभिनव पल्लवी की बात सुनकर उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगा। नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। अभिनव पल्लवी और नरेंद्र की बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। जैसे ही नरेंद्र ने उसे कमरा दिखाने की बात कही, वो नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? नरेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, आप कैसी बात कर रहे हो बेटा, आप हमारे बेटे हो और अब आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अभिनव ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हमेशा? उसने जैसे ही ये बात पूछी, नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमेशा, और आप नहीं जानते, एक बार अगर आप इस राजमहल के राजा बन गए तो फिर आपके हाथ में पावर ही पावर होगी, पैसा पावर, ये सारे नौकर चाकर सारे लोग, यहाँ तक कि शहर के लोग भी सब आपका कहना मानेंगे, सब कुछ आपके हाथ में होगा और सब आपकी इज्जत करेंगे, आपका फैसला ही आखिरी होगा और कोई आपके आगे बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सब बोलते हुए वो अभिनव की तरफ देख कर मुस्कुराया। वो अभिनव को एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा था। उसने ये बात बोली लेकिन अभिनव थोड़ा शांत था और वो सोच में डूब गया। नरेंद्र इतना बोलकर उसे उसका कमरा दिखाने के लिए लेकर गया। वो अभिमन्यु के बगल वाला कमरा था, जो अभिमन्यु के जितना ही बड़ा था और अभिमन्यु के कमरे के जैसी ही उसकी सजावट भी थी। वो उस कमरे को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो सब सच है या सपना, और क्या सच में हमेशा के लिए अब से वो इतने बड़े और आलीशान कमरे में रहेगा। उसने हैरानी से नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये सच में मेरा कमरा है? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें आपको एक ऐसी चीज दिखानी है जिसे देखकर आप अपने होश खो बैठेंगे। अभिनव उसकी ये बात सुनकर उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, अब ये मुझे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? इससे भी ज्यादा कुछ और बचा है क्या? अभिनव ये बात सोच ही रहा था कि तभी नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसको सीधे अपने कमरे में लेकर आया। वहां पर पल्लवी दो नौकरों के साथ खड़ी थी और वे नौकर टेबल पर खाना लगा रहे थे। पल्लवी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। जैसे ही उसने अभिनव के साथ नरेंद्र को कमरे के अंदर आते हुए देखा, वो जल्दी से आगे आई और उसने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बेटा बैठो, हम एक साथ डिनर करते हैं। इतना बोलकर वो उसे जबरदस्ती वहीं सोफे पर बिठाने लगी। पल्लवी को इतना टची और इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते देखकर अभिनव काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। उसने पल्लवी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और वो बोली, बताओ क्या खाओगे, हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। इतना बोलकर वो उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। उसने अभिनव के बिल्कुल बगल में बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खाने वाला बनाया और उसके मुंह के पास ले जाकर खिलाने लगी। अभिनव ने पहला निवाला तो उसके हाथ से खा लिया। नरेंद्र वहीं बगल में बैठकर वो भी उसके साथ ही खाने लगा। अभिनव को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। इसीलिए जैसे ही वो उसे दूसरा निवाला भी अपने हाथ से खिलाने चली, उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, रहने दीजिए आप, मैं खुद से खा लूंगा, भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं जो फिलहाल तो सही सलामत भी हैं। इतना बोलकर वो पल्लवी के हाथ से खाने की प्लेट लेने लगा।
पल्लवी ने जैसे ही अभिनव के मुंह से ये सुना, वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? हम आपकी माँ हैं, तो आप हमें मासा कहकर बुलाइए और आप हमेशा ही सलामत रहें, हमारी यही दुआ है बेटा। अभिनव ने जैसे ही ये बात सुनी, वो नरेंद्र की तरफ घूरते हुए देखने लगा। नरेंद्र ने कहा, वो सही कह रही है अभिनव बेटा, वो आपकी माँ है तो आप इन्हें मासा कहकर ही बुलाइए। नरेंद्र की बात सुनकर उसने पल्लवी को घूरते हुए कहा, ये और मेरी माँ, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, और आज से आप हमें बाबा सा और पल्लवी को मासा ही कहकर बुलाएंगे। नरेंद्र ने ये बात थोड़ी सख्ती से कही। अभिनव के पास और कोई चारा नहीं था तो आखिर उसने नरेंद्र की बात मानते हुए कहा, ठीक है बाबा सा। अभिनव ने जैसे ही ये बात कही, पल्लवी ने उसे फिर से अपने हाथों से खिलाते हुए कहा, एक बार ये खाकर देखो बेटा, आपको बहुत पसंद आएगा। इतना बोलकर वो जबरदस्ती अभिनव के मुंह में अपने हाथों से निवाले चिलाने लगी। अभिनव इरिटेट हो गया और वो उठकर खड़े होते हुए बोला, अरे अगर आप ऐसे करेंगी तब तो मुझे जितनी भूख लगी है वो भी मर जाएगी। प्लीज देखिए, मुझे अभी तक अकेले खाने की ही आदत थी, तो इतना ज्यादा राजकुमार वाला ट्रीटमेंट मैं नहीं झेल सकता। प्लीज आप लोग भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करिए, मैं अकेले खा लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है अभिनव बेटा, हम अब आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन प्लीज हमारे साथ यहीं पर बैठकर खाना खा लो। अभिनव ने पल्लवी की तरफ देखा, वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर बात बोल रही थी, तो उसने उसकी बात मान ली और वहीं पर चुपचाप बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता खाना खाकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। नंदिनी ने भी जैसे ही खाना खत्म किया, वो उदय के साथ अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि वो इप्सिता के कमरे की तरफ जाने लगी। नंदिनी को इप्सिता के पास जाते देखकर उदय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उससे पूछा, क्या बात है नंदिनी, आप कहाँ जा रही हैं? नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं इप्सिता के पास जा रही हूँ, वो सुबह से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी ना, और मैं ज्यादा देर उससे बात भी नहीं कर पाई, और सुबह अभिमन्यु जीजू के आने के बाद इप्सिता का सिर भी दर्द होने लगा था, तो मैं थोड़ी देर उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। उदय आप कमरे में चलकर सोइए, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उदय नंदिनी की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और वो कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो अचानक से रुका और उसने नंदिनी की तरफ घूरते हुए देखा और वो चलते चलते रुक गया। उदय को इस तरह रुकते देखकर नंदिनी थोड़ी सी परेशान हुई और उसने उसी तरह कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या बात है, आप रुक क्यों गए उदय? उदय ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, नंदिनी सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि अभिमन्यु आपके जीजू नहीं है और ना ही वो अब उस काबिल हैं कि वो हमारी इप्सिता से शादी कर सकें, इसीलिए अब आप भूल कर भी उन्हें जीजू मत कहिएगा, हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और वो धीमी आवाज में बोली, ठीक है मैं समझ गई। उदय ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा है जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं। और इप्सिता भी। इससे पहले कि नंदिनी और कुछ बोल काती, उदय चुपचाप अपने कमरे की तरफ ही चला गया। टू बी कंटिन्यूड।